ओम शांति बोलिए, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अच्छी से नींद की रात को? बिल्कुल फ्रेश है? काफी लोग पहुंचने के हैं, अभी विलंब हो गया था रात्रि में, लेकिन कोशिश करें कि सुबह के जो सत्र होते हैं राजयोग के, उसमें हम समय पर पहुंचे, क्योंकि एक एक लाइन उस सत्र की मिस होती है तो आगे का समझ में नहीं आता है। और मेनली जो हमारा थीम है इस कॉन्फ्रेंस का, वैल्यू बेस्ड रिसर्च फॉर इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्मनी। तो इकोलॉजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर हम हार्मनी ला सके, उससे पहले हमें स्वयं में हार्मनी लाने की जरूरत है। क्योंकि कल आपने स्वयं को पहचाना कि मैं कौन हूं। कौन है आप? आत्मा। वैल्यूज किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है। कौन सी वैल्यूज पता चली कल कि वैल्यूज है उसमें? 7 वैल्यूज, 7 क्वालिटीज, इनेट क्वालिटीज जिसको कहते हैं, कोर क्वालिटीज जिसको कहते हैं, आत्मा का निजी स्वभाव, निजी संस्कार जिसे कहते हैं, वो 7 निजी संस्कार, निजी स्वभाव, निजी गुण कौन से? यस, तो मैं आपको याद करने के लिए एक फार्मूला दे देती हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इन क्वालिटीज को क्या करना है, अपना है तो निजी संस्कार, पर वो निजी संस्कार नेचुरल नहीं है। पता है नेचुरल संस्कार हमारे क्या बन चुके हैं आज? जो नेचुरल थे वो अभी आज नेचुरल नहीं है, उसके बदले कौन से वाले बन गए हैं हमारे संस्कार नेचुरल? ऑपोजिट ऑफ द 7 क्वालिटीज, गुस्सा, नफरत, इरिटेशन, हर्ट, रिवेंज, टेंशन, फियर, पूरी जो लिस्ट है निगेटिविटी की, वो हमारे नेचुरल बन चुके हैं, राइट? और इसलिए अब जब मुझे पता चल गया है माय इनेट क्वालिटीज जो है, जो 7 है, मैं चाहती हूं कि एवरी टाइम आई कम इन टू एक्शन आई शुड रेडिएट दिस क्वालिटीज। चाहते हैं ना सभी? बट होगा क्या, वो जो ऑपोजिट वाले नेचुरल बन चुके हैं वो पहले उछल के आ जाएगा। मैं चाहूंगी मैं प्रेम से बिहेव करूं, पर एक बॉसिज्म का संस्कार, रॉब का संस्कार, गुस्से का संस्कार, वो उसमें जंप करेगा और मैंने जो थॉट किया था, जो मैंने डिटरमिन किया था कि मैं प्रेम से करूंगी, वो पीछे रह जाता है। मैंने सोचा था सिचुएशन आया है मैं बहुत शांति से हैंडल करूंगी, बट मेरा नेचुरल संस्कार गुस्सा जंप करके आ जाता है। मैंने सोचा था जीवन में कोई परिस्थिति आएगी या आई है, मेरे पास क्वालिटी है ना पावर की, मैं शक्तिशाली हूं ना, तो मैं शक्तिशाली स्थिति में रहकर इसको हैंडल करूंगी, ये मेरा थॉट था, ये मेरा डिटर्मिनेशन था। बट अंदर की कमजोरी ने जंप किया एंड आई शेक, मैं हिल गई. होता है ना ऐसा. नाउ इन ऑर्डर टू मेक दिस सेवन क्वालिटीज फर्म, उसको इतना नेचुरल बना दूं कि अब मैं विचार न भी करूं, जैसे ये निगेटिव जंप करके आता है ऐसे पॉजिटिव जंप करके आवे. और उसके लिए क्या करना होगा. एक बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स में बहुत वीक है. फादर चाहता है कि मैथमेटिक्स में तो इसने अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नौकरी करे ना करे बिजनेस तो करना है उसने, तो मैथमेटिक्स तो उसका अच्छा होना चाहिए ना, बेसिक प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. तो स्कूल तो जा रहा है बट वीक है, लेकिन फादर की इच्छा वो इसमें स्ट्रांग हो. क्या करेगा फादर, ट्यूशन लगा देगा. और ट्यूशन लगा देना मतलब उसका कनेक्शन उस हस्ती के साथ जोड़ देगा जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है. ऐसे ही जो मेरे सेवन क्वालिटीज है कि जब मैं सोल कॉन्शियस होकर लाइफ को जीऊंगी तब वो सेवन क्वालिटीज जंप करेगी, अदरवाइज बॉडी कॉन्शियस में रहकर तो वो निगेटिव वाले लिस्ट ही जंप करती है फटाफट से, न चाहते हुए भी वही जंप करके आ जाता है. और इतना फास्ट जंप करता है मुझे पता भी नहीं चलता है मैं प्रेम की स्थिति में होते होते तुरंत किसी और में कैसे खिसक गई, मैं शांति की स्थिति में थी मैं कैसे गुस्से में आ गई मुझे ही नहीं पता चला. होता है नहीं होता है. इट मीन्स मेरा बॉडी कॉन्शियसनेस इतना पक्का हो गया है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल. और सोल के अंदर ये क्वालिटीज है जो मैं चाहती थी, जिसको मैं आउटर वर्ल्ड में खोजती थी वो मेरे इनर वर्ल्ड में है. एंड फॉर दैट आई नीड टू इंक्रीज द प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, ताकि मेरी वो जो नेचुरल जो क्वालिटीज है वो नेचुरल बन जाए और हर एक्शन में वही जंप करे. तो अभी हम वीक है, अभी तो हमने जब समझा है कि मुझे सोल कॉन्शियस डेवलप करनी है. और इसीलिए जैसे बच्चा अगर कमजोर है तो उसको ट्यूशन करा दिया, लगा दिया कि जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दो और वो उसके साथ लर्न करता रहेगा उसके संग में बैठकर. ऐसे ही जैसे हम सोल है और एक सोल है जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल, परम आत्मा. और वो परम आत्मा का सोल कॉन्शियसनेस हमेशा कायम रहता है, और इसलिए मुझे उसका संग करना पड़ेगा ताकि मैं उसके संग में रहूं तो मेरी सोल कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो. मुझे उसके साथ ट्यूशन लगानी पड़ेगी ना, तभी मेरा वो सोल कॉन्शियसनेस स्ट्रांग होगा. तो जिसके साथ मुझे ट्यूशन लगाने की जरूरत है ताकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो और हर एक्शन में मुझ सोल की जो क्वालिटी से इनेट वो जंप करे, तो मुझे पहले उसको अच्छी से समझना होगा कि वो सुप्रीम सोल है कौन, क्योंकि मुझे उसका संग करना है ताकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए. तो आज हम उस सुप्रीम सोल का यथार्थ परिचय प्राप्त करेंगे, जैसे कल सोल का परिचय प्राप्त किया, जिसको कहेंगे खुद का परिचय प्राप्त किया. आज हम प्राप्त करेंगे खुदा का परिचय. और किसी ने बहुत खूब कहा है, खुद खुद को जाने बगैर अगर खुदा को जानने की कोशिश करोगे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुद को जाना और फिर खुदा को जानने जाओगे सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद हूं आत्मा और खुदा है परम आत्मा, मतलब वो भी एक आत्मा ही है। तो आत्मा वाला हिस्सा तो हम समझ चुके हैं और इसीलिए परम आत्मा को समझना अब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे तो हम सभी परमात्मा को याद करते हैं, करते हैं ना? कोई है ऐसा जो कि नहीं मैं नास्तिक हूं, मैं परमात्मा को कभी याद नहीं करता हूं? भले पूजा पद्धति नहीं करते होंगे कोई, पर याद तो सभी करते हैं, करते हैं ना सभी? अगर मैं परमात्मा को याद करती हूं, मतलब परमात्मा की छवि को भी मैं जानती हूं, क्योंकि याद कैसे करोगे आप किसी को, उसकी छवि मालूम होनी चाहिए ना आपको। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, हिंदू जिसे ईश्वर कहता है, भगवान कहता है, प्रभु कहता है, परमात्मा कहता है, मुस्लिम जिसे अल्लाह कहता है, क्रिश्चियन जिसे गॉड कहता है, वो गॉड, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो भगवान एक है या अलग अलग है? एक है। शुड आई लॉक योर आंसर? लॉक करूं? फिर नहीं बदलना। अगर वो एक है फिर हम आपस में ये क्यों पूछते हैं आपके भगवान कौन से हैं? इसका मतलब हमने उसको एक भी माना है, उसको अनेक भी माना है। Got it? मैं ही सामने वाले को पूछ रही हूं आपके भगवान कौन है, जबकि आई बिलीव भगवान एक होता है। मैं अपनी ही बिलीफ सिस्टम को क्या कर रही हूं, क्रॉस कर रही हूं। आज इसी को हमें अच्छे से समझना है। जैसे कल देखा होगा ना मिरर के सामने, इसको मैं कहती हूं, लेकिन अगर उंगली कटी चाकू से तो मैं उंगली नहीं, मेरी उंगली। इसको जब मैं बोला तो ये भी मैं हुआ ना, बट दो बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हैं। सेम विद द गॉड, कि अभी मैंने स्वीकार किया ही इज वन, लेकिन मेरी ये भी बिलीफ है कि अनेक होते, इसलिए मैं पूछ रही आप किसको मानते हो। और इसलिए कहा यथार्थ परिचय, एक्यूरेट। जिस स्वयं के बारे में तो बहुत कुछ पता था ना आपको, परिचय तो देते हैं ना सभी को, बट रियल सेल्फ कौन है वो कल पता चला। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास, अपने अपने भावना के अनुसार हमने अपने हृदय में, अपने दिलों में परमात्मा की छवि बिठाई है। लेकिन बावजूद इसके, जब जब हम परिस्थितियों से घिरते हैं और अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, हम बोलते हैं अंदर से, अंतरात्मा कहती है, हे भगवान अब हो कौन, अब क्यों नहीं मेरी मदद करते हो? कहते हैं ऐसा। हम यो रोज याद कर रहे तो कौन है वो तो मालूम है ना, मुझे मालूम है ना कौन है वो। फिर मुसीबतों में, हेल्पलेस कंडीशन में अंतरात्मा से ये आवाज क्यों निकलती है, तुम हो कौन, तुम रहते कहां हो, क्यों नहीं तुम मुझ पर अपनी करुणा मतलब अपना कर्तव्य क्यों नहीं फुलफिल कर रहे हो? अंतरात्मा कहती है या नहीं कहती है? कहती है इसे. What does it mean? एक बच्चा बहुत छोटा बहुत छोटा मेले में गया पिताजी के साथ, बट मेले के आकर्षण में पिताजी का हाथ छूट गया. जब होश संभला तब पता चला कि मेरे फादर तो मेरे साथ है नहीं, मैं तो अकेला हूं. अब ढूंढ रहा है नहीं मिल रहा है, लास्ट ऑप्शन रोना. रोए जा रहा है पापा पापा पापा. उसका रोता हुआ देखकर लोग उसको पूछते, क्या हुआ बेटा? मेरे पापा. पूछते, बताओ नाम क्या है तुम्हारे पापा का? बट वो इतना छोटा है कि नाम भी नहीं बता पा रहा है. तो कैसे ढूंढे भाई? तुम नाम बताओ, अनाउंसमेंट की जाए, कुछ तो आके पिताजी मिले आपको, लेकिन नाम भी नहीं बता रहा है. अच्छा रूप बताओ, थोड़ा डिस्क्राइब करो, वो भी नहीं बता रहा है. उसके सामने आजकल तो मोबाइल में फोटोस होते हैं ना, एक एक फोटो उसके सामने किया जा रहा है, ये है तेरे पापा, फिर दूसरा ये तेरे पापा, फिर तीसरा ये तेरे पापा. इट मीन्स वॉट? पिता की छवि अंदर अंकित है और इससे मेल नहीं खा रही है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं. क्लियर? अंदर में तो छवि अंकित है बट वो बाहर नहीं मैं बोल पा रहा हूं, लेकिन जब आप मुझे तस्वीर दिखा रहे हो वो उससे मैच नहीं हो रही, ये तो मुझे समझ में आ रहा है. एंड दैट इज वाई वो बच्चा स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि ये मेरे पापा है. ठीक ऐसे ही एक छवि आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार हमने अपने दिलों में बिठाई, बट जब हेल्पलेस कंडीशन में आते हैं तब अंतरात्मा कहती है, हे प्रभु तुम कौन हो, तुम कब दर्शन दोगे, कब मुझे आप अपनी सच्चाई से वाकिफ कराओगे. बोलते हैं इट मीन्स अंतरात्मा अगर ये पुकार रही है, अंतरात्मा में उसकी सच्ची छवि अंकित है, अंकित है, बट वो क्लियर नहीं आ रही सामने. भले ही मैंने आस्था के अनुसार एक बिठाई है बट यथार्थ वाली भी अंकित है और वो बाहर नहीं आ रही, और इसीलिए अंतरात्मा ऐसे पुकारती है, आखिर आप हो कौन, आप क्यों नहीं मेरे सामने आते हो, क्यों नहीं अपना दर्शन देते हो, क्यों नहीं अपनी सच्चाइयों से मुझे वाकिफ करते हो, मुझे परिचित कराते हो. तो अंतरात्मा में अंकित है, और आज हम उसी परमात्मा का, उसी छवि का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं जो अंदर में अंकित है पर बाहर नहीं आ पा रही है. लेकिन आज जो कुछ हम सुनेंगे उससे हमें पता चलेगा अंदर में जो छवि अंकित है परमात्मा की, उसी से ये वाली छवि मैच हो रही है. तो कौन सी वो छवि है, वो परमात्मा ने क्या कर हमें परिचय दिया है, वो आज हम समझेंगे. और परमात्मा जब भी कोई बात बताते हैं बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सहज करके बताते हैं. तो सिंपल करते हुए उन्होंने कहा, देखो बच्चे आप मुझे परमात्मा कहते हो, और परमात्मा माना ही परम और आत्मा, इन दो शब्दों की संधि है ना. परमात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो परम शब्द मिलेगा और दूसरा आत्मा शब्द मिलेगा. तो परमात्मा ने कहा, परमात्मा माना परम आत्मा, अर्थात मैं भी एक आत्मा हूं, परंतु मैं आत्मा परम हूं। गॉट इट? वो भी क्या है, एक आत्मा है परंतु कैसी है, परम है। इसलिए अब मुझे ये समझना पड़ेगा परम माना क्या। अब बताइए परम माना क्या, परम माना क्या, सर्वशक्तिमान, श्रेष्ठतम। देखो मैं इसको सिंपल आंसर करीब करीब है, मैं आपको सिंपल कर देती हूँ इसको, क्योंकि पता सब है। इस परमात्मा शब्द से ही आज उनका परिचय आने वाला, हम कहीं और नहीं जाने वाले, इसी शब्द पर हम अपनी नजरें बना के रखेंगे और इसी परमात्मा शब्द से ये परिचय निकल कर आएगा जो परमात्मा ने हमें बताया। क्योंकि हम शब्दों की गहराई में जाते नहीं है, सिर्फ रट लेते हैं। अब हम शब्दों की गहराई में उतरेंगे और वहीं से परमात्मा का यथार्थ परिचय निकल कर आएगा। समझो मेरे जीवन में कुछ घटना घट गई है और उसने कोर्ट केस का रूप ले लिया है। मेरा केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और सुनवाई हुई, फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया, दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय लेकर रहूंगी, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। वहां गई लेकिन फिर वहां फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया। फिर मैंने कहा मैं न्याय लेकर रहूंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। पर दुर्भाग्यवश वहां पर भी फैसला मेरे पक्ष में नहीं आया। अब लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली, क्या अब भी कोई कोर्ट इस दुनिया में बाकी है जहां मैं न्याय पाने के लिए जा सकती हूं? अंडरलाइन कोर्ट इस दुनिया में है कोई और? नहीं है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट है जिसके ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, भले ही मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई है, पर स्वीकार करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा बाकी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। पर हमको न्यायालय थोड़ी समझना था, हमको परमात्मा समझना था। बट हमने एग्जाम्पल लिया ये समझने के लिए परम आत्मा का दूसरा शब्द क्या हो गया, सर्वोच्च आत्मा। गॉट इट? सर्वोच्च है वो, परम माना वो सर्वोच्च है, और सर्वोच्च माना यहां से क्या मीनिंग आया था, उसके ऊपर कोई और आत्मा नहीं है, और वो जो कहेगा वो मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हुआ सर्वोच्च, परम माना सर्वोच्च। बट अभी सर्वोच्च को भी और सिंप्लीफाई करना होगा। रिसर्च में यही तो होता है ना, यू जस्ट गो ऑन सिंप्लीफाइंग 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 एंड यू कम टू नो। तो मुझे इसको और सिंप्लीफाई करना होगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करती हूँ इसको और, कि सर्वोच्च माना क्या, कि जिससे ऊंचा और कोई नहीं। जो भी इसका दूसरा कोई होगा वो उससे क्या होगा, नीचे ही होगा, ऊपर कोई नहीं होगा। अब सपोज मैं अपने एक माँ बाप है और एक बच्चा है, माँ बाप बहुत अनपढ़ है, गरीब है, तो उन्होंने सोचा हम अपने बच्चे को ऐसे अनपढ़ और गरीब नहीं रहने देंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि वो खूब कमाएगा और अच्छे से जीवन जिएगा। तो अपने पेट पर पट्टी बांधकर भी रात दिन परिश्रम करके बच्चे को खूब पढ़ाया और वो बच्चा आज खूब पढ़कर एक IAS ऑफिसर बन गया है। ठीक है, अब लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली। ये अनपढ़ माँ बाप, ये उस अनपढ़ माँ बाप का बच्चा जो पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बना है, इन दोनों में ऊंचा कौन, कौन ऊंचा, अनपढ़ माँ बाप या वो बच्चा जो पढ़ा हुआ है? ठंडा ठंडा आंसर नहीं, राइट आंसर जो लगता है वो बोलो, क्योंकि मुझे लॉक करना है उस आंसर को, फिर बदलना नहीं है आपको। अनपढ़ माँ बाप उस पढ़े लिखे बच्चे से भी क्या है, ऊंचे है। ठीक है, ये अनपढ़ पढ़ा लिखा ऑफिसर बच्चा पहले तो प्राइमरी स्कूल में गया होगा ना, सीधा IAS ऑफिसर थोड़ी बना होगा। जिस प्राइमरी स्कूल में, जिस प्राइमरी टीचर से उसने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ी थी, वो प्राइमरी टीचर आज भी प्राइमरी टीचर है और उससे पढ़कर ये बच्चा आज IAS ऑफिसर बना है। तो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, ये प्राइमरी टीचर और ये बच्चा जिस प्राइमरी टीचर से पढ़कर आगे आगे पढ़ते हुए IAS ऑफिसर बना है, इन दोनों में ऊंचा कौन? लॉक कर दो आंसर को, फिर बदलना नहीं, अभी बदलना है तो बदल लो, लॉक कर दो। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ बाप भल अनपढ़ है, प्राइमरी टीचर भल प्राइमरी टीचर है, लेकिन उससे पालना लेकर, उससे पढ़ाई लेकर भल कोई बच्चा IAS ऑफिसर क्यों नहीं बन जाए, वो उनसे कभी ऊंचा नहीं हो सकता, किसी और से ऊंचा हो सकता है। क्लियर, किसी और से ऊंचा होगा वो, क्योंकि जिस ऑफिस में जाके वो बैठेगा उसके अंडर में कितने सारे लोग होंगे, तो उनसे तो वो ऊंचा होगा ना, बट अपने माँ बाप से, अपने टीचर से वो कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता है। इसका मतलब हर वो आत्मा जो माँ के गर्भ से देह धारण करके इस रंगमंच पे अपनी एंट्री करेगी, वो देहधारी आत्मा कभी भी सर्वोच्च नहीं बन सकती। गॉट इट, कभी भी नहीं होगी ना, वो किसी और से हो सकती है ऊंची, पर सबसे ऊंची हो जाए नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुमको देह देने वाले तुम्हारे माता पिता तुमसे ऊंचे हैं। इसका मतलब परमात्मा अगर सर्वोच्च है, लेकिन अगर वो भी देह धारण कर ले तो सर्वोच्च नहीं रह जाएगा ना, नहीं रह जाएगा ना वो सर्वोच्च, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कोई भी आत्मा जो देह धारण करेगी वो सर्वोच्च हो ही नहीं सकती है, एट एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट वो सर्वोच्च नहीं हो सकती है। तो परमात्मा भी अगर देह धारण करेंगे तो सर्वोच्च रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन हम कह रहे वो क्या है? सर्वोच्च है। और इसीलिए हमने कहा तू अजन्मा है। कहा उस परमात्मा के लिए तू अजन्मा, भले मैंने छवि कोई भी बिठाई हो, भले मैंने आस्था के अनुसार हृदय में कोई भी छवि बिठाई हो, लेकिन क्या कहेंगे? तू अजन्मा है। तभी तो वो सर्वोच्च रह पाएगा। इसका मतलब वो एक ऐसी आत्मा है जिसके खुद के कोई मात पिता नहीं है, लेकिन वो सर्व आत्माओं के लिए मात पिता है। वो एक ऐसी आत्मा है जिसका खुद का कोई टीचर नहीं, लेकिन वो सर्व आत्माओं का टीचर है। वो एक ऐसी आत्मा है जिसका खुद का कोई गुरु नहीं, लेकिन वो सर्व गुरुओं का भी सदगुरु है। सर्व आत्माओं के लिए वो गुरु है। और इसीलिए उसको सिर्फ परमात्मा नहीं कहा जाता है, उसको सिर्फ परम आत्मा नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है तू परम पिता है, तू परम शिक्षक है, तू परम सदगुरु है, तू परम रक्षक है। सबके लिए क्या करते हैं उसको? परम परम परम। तो क्लियर हुआ सर्वोच्च का मीनिंग, कि परमात्मा, हम और आप आत्माएं जैसे मां के गर्भ में जाकर देह धारण करती है और देह रूपी वस्त्र पहनकर एस एन एक्टर इस रंगमंच पे रोल प्ले करते हैं, ऐसा परमात्मा देह धारण नहीं करता है हमारी जैसे। He definitely comes and plays some role, but माँ के गर्भ में जाकर देह धारण नहीं करेगा वो। अगर कर लिया तो फिर वो सर्वोच्च नहीं है। ठीक है, तो सर्वोच्च माना क्लियर हो गया, उसको कहा अजन्मा, इसीलिए कहा। अब जब वो हमारे जैसे देह धारण नहीं करेगा तो देह के बंधन में नहीं आएगा, तो जन्म और मृत्यु नहीं होगी। जैसे हम आत्माओं का शरीर धारण करके रंगमंच पे आए, बोला जन्म हुआ, उसी शरीर को छोड़ा, बोले मृत्यु हुई, और फिर कहा वो आत्मा जाके आगे चल बसी, माना नई देह धारण की, फिर जन्म ली। और इसी को कहा कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्कर से गुजरती है। बट वो सुप्रीम सोल, वो परम आत्मा जो माँ के गर्भ में जाकर देह ही नहीं धारण करती, तो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर, बियॉन्ड दिस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। और जब जन्म ही नहीं लिया, देह ही नहीं लिया, तो देह के संबंधी भी नहीं, वो भी बंधन नहीं, कर्म नहीं, कर्म के बंधन नहीं, मतलब फ्रूट, कर्म करेंगे तो कर्म फल आएगा, और कर्म फल किस रूप में आता है? सुख या दुख, निंदा या स्तुति, जय या पराजय, लाभ या हानि, इस रूप में आता है। सो ऑल दिस साइकल्स, जो ये सभी के सभी, इन सभी साइकल से, चक्रों से परमात्मा ऊपर है, बियॉन्ड। और इसलिए उसको सिर्फ अजन्मा नहीं कहा, तू अकर्ता है, तू अभोक्ता है। कहा ये उसकी महिमा में, तू अजन्मा है, तू अकर्ता है, तू अभोक्ता है। बियॉन्ड ऑल दिस साइकल्स, जिसमें हम मनुष्यात्माएं फंसी हुई है। इसको कहा वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, सर्वोच्च माना ऊंचे से ऊंचा है, और ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है जिसको कहा सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। हम कहते हैं हमारे ऑफिस में ये सर्वोपरि व्यक्ति है, और सर्वोपरि व्यक्ति है मीन्स प्रधान व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति है, कि जिस मुख्य व्यक्ति से ही हम सब उसके ही इन्फ्लुएंस में हमको रहना पड़ता है ना, कि बात से सर्वोपरि माना उसके ही गाइडेंस में हमें चलना होगा, उसको कहते सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ होने के कारण वो हमारे जीवन में जो भी डालेगा वो क्या डालेगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही डालेगा, मुझे श्रेष्ठ मार्ग की ओर ही लेकर जाएगा। सो ही इज सर्वोपरि, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कहो चाहे सर्वोपरि कहो। अब चूंकि वो सर्वोपरि है मीन्स हर प्रकार के चक्र से, हर प्रकार के बंधन से वो मुक्त है, और हम जब लाइफ स्मूथली चल रही है तो ये जन्म मरण का चक्र बंधन नहीं फील होता है, लेकिन जब लाइफ में से स्मूथनेस चली जाए और बहुत सारी परिस्थितियों से, सर्कमस्टांसेस से, प्रॉब्लम से हम घिर जाए, तब तो लगता है बंधन है जीवन, और इन दैट कंडीशन आत्मा अंदर से पुकारती है, हे परमात्मा, ओ मुक्ति दाता, मुझे इन सब बंधनों से मुक्त करो। अंतरात्मा को सब कुछ पता है कि वो मुक्ति दाता है। क्यों है मुक्ति दाता? क्योंकि सभी बंधनों से वो क्या रहता है, मुक्त रहता है, और जब मैं अपने आप को बंधन में पाती हूं, मैं आत्मा, अंदर से स्पॉन्टेनियस आवाज आती है, ओ मुक्ति दाता, मुझे मुक्त करो। क्योंकि वो मुक्त है, आपके हाथ में भी बेड़ियां लगी हो, बांधी हुई हो, और मेरे में भी, तो ना तो मैं आपको सहायता कर सकती हूँ, ना आप मुझे सहायता कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हाथ की बेड़ियां खुली हैं, आप मेरे हाथ की बेड़ियां खोलने में मदद कर सकते हैं। परमात्मा चूंकि मुक्त है हर प्रकार के बंधन से, और हम जब अपने आप को बंधनों में बिल्कुल हेल्पलेस पाते हैं, अंदर से पुकार बैठते हैं, ओ मुक्ति दाता, मुझे मुक्त करो, नहीं चाहिए मुझे दुनिया, मुझे बुला लो अपने पास, अपने आप आवाज निकलती है। भले यू स्मूथ लाइफ चल रही तब कुछ नहीं होता है, तो आत्मा को पता है वो मुक्ति दाता है। क्यों? वो मुक्त रहता है, और अगर मैं अपने आप को हेल्पलेस पा रही हूं, इट मीन्स व्हाट, मैं बंधनों में जकड़ा, हेल्पलेस माना क्या, आई एम किससे भर गई हूं, वो जो पूरी लिस्ट है ना नेगेटिविटी की, उससे भरी हुई, बस वही अंदर चल रहा है, कभी चिंता, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी इरिटेशन, कभी रिवेंज, उससे मैं अपने आप को बाहर नहीं कर पा रही हूं, कभी गुस्से का थॉट, कभी चिंता, कभी डर, कभी कुछ, और मैं उससे निकल नहीं पा रही हूं, तब मैं कहती हूं मुझे मुक्त करो। तो एक्चुअली मुक्त करो माना मैं इन नेगेटिव फीलिंग से मुक्त होना चाहती हूं, गॉट इट, मैं क्या चाह रही हूं, मेरी पुकार क्या कह रही है, ये जो इतना सारा निगेटिव चल रहा है ना, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये मुझे कंट्रोल करके बैठे हैं और जिस कारण मैं हेल्पलेस हूं, प्लीज इससे मुझे मुक्त करो, जो सारी नेगेटिव लिस्ट चल रही है। एंड डेफिनेटली आत्मा को भीतर में स्मृति है, वो नेगेटिव लिस्ट से भी मुक्त है। वो मुक्त स्थिति में क्या है, वो हम क्या पुकारते, तू सत्य चित आनंद है, यही कहते हैं। वो कौन सी स्थिति में है, व्हाट इज दिस स्टेट, सत्य चित आनंद, एक आनंदमय स्थिति में रहते हैं। और जब मैं अपने आप को कहती मुझे मुक्ति दो, माना मैं वास्तव में क्या चाह रही हूं, आई वॉन्ट टू मेक माई स्टेट ऑफ माइंड फुल ऑफ दैट प्लेस आनंद, और इसीलिए उसको मैं पुकारती हूं, ओ सच्चित आनंद भगवान मुझ पर करुणा करो अपनी, क्योंकि करुणा कौन कर सकता है, जो आनंद में होता है। करुणा बाय प्रोडक्ट है आनंद का, जैसे ईर्ष्या बाय प्रोडक्ट है कंपैरिजन का। अब जब तक किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, आपको ईर्ष्या नहीं आ सकती है। अब जब कंपेयर करते हैं ना, मैं भी इतने साल से, वो भी इतने साल से, मैं भी हार्ड वर्क, वो भी हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क करे वो भी, बट उनकी प्रमोशन कर दी गई, मेरी क्यों नहीं की, कंपैरिजन किया ना, एंड उसके अनुसार अब मुझे ईर्ष्या होगी, है ना। ईर्ष्या इज बाय प्रोडक्ट ऑफ कंपैरिजन, एंड मर्सी करुणा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ आनंद ब्लेस, और इसीलिए हम उसको बोलते हैं ओ करुणा के सागर, ओ दया सिंधु, ओ कृपालु ओ दयालु, कब मुझ पर अपनी कृपा बरसाओगे। अंतरात्मा पुकारती है उसको, तो वो सत्य चित आनंद है। तो समझ में आया सर्वोपरि का सिंप्लीफिकेशन, सर्वोच्च का सिंप्लीफिकेशन समझ में आया, और अभी सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ का सिंप्लीफिकेशन, कि वो मुक्ति दाता है, वो सच्चित आनंद है, वो करुणा का सागर है। तो परम से दो शब्द अभी तक हमने निकाले, एक परम माना सर्वोच्च, दूसरा परम माना सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि, और उनका सिंप्लीफिकेशन हमने देख लिया। गॉट इट ना। अब करुणा के नाम पर वो हम पे करे क्या, जरा ये तो बताओ। हमने उसको पुकारा आप मुझ पर करुणा करो, क्या करना चाहिए करुणा के नाम पर उसने हम पर। हमने कहा वो परम पिता है, हमने कहा वो परम शिक्षक है, हमने कहा वो परम सदगुरु है, हमने कहा वो परम रक्षक है, तो क्या करेगा करुणा मेरे पर, कैसी करुणा करेगा। आप भी माता पिता हैं अपने बच्चों के, आप कैसे करुणा करते हो अपने बच्चों पर। लेट मी मेक इट वन एग्जाम्पल से मोर सिंपल। आपका बच्चा है, स्वस्थ था, लेकिन पिछले 8 दिन से वो अपनी स्वस्थता खो चुका है, ही हैज बिकम इल, बीमार चल रहा है। आपको जितने भी घरेलू उपाय पता थे, रेमेडीज जो भी आपको मालूम थी, आपने सब कर लिए, बट मजाल है कि उसकी बीमारी जाए जा ही नहीं रही है, कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। आप क्या करेंगे, चल भाई डॉक्टर के पास, है ना। मेरे पास जो कर सकती थी मैंने कर लिया, लेकिन उससे तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तो क्या करते हैं, चलो डॉक्टर के पास। सो डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर जाने का मकसद क्या हुआ, कि आज के डेट में जो मेरा बच्चा अनहेल्दी है, बीमार है, डॉक्टर कुछ ऐसा करे करुणा जो बच्चा अनहेल्दी से हेल्दी हो जाए। दिस इज द एम, टू टेक माय चाइल्ड टू अ डॉक्टर। अब आपके इस एम को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सी करुणा करता है डॉक्टर? दवाई देता है और क्या करता है? प्रिकॉशंस बताता है और क्या करता है? डिटेक्शन करता है और क्या करता है? लेट मी समराइज, सभी आंसर राइट है, लेट मी समराइज इट। आप अपने बच्चे को लेकर जाएंगे, मतलब जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम क्या है वो पहले सुनेगा, पूछेगा ना, बताओ क्या, क्योंकि उसके पास तो भंडार पड़ा है कि कौन सी बीमारी में क्या दवाई। पर आपकी वाली कौन सी है, वो वाली तो उठा के देगा ना। तो आपकी पहले प्रॉब्लम सुनेगा वो, और आपकी प्रॉब्लम सुनी और इधर तो सब कुछ भंडार पड़ा है, उसके अनुसार अंदर उसका इंटेलेक्ट बुद्धि दौड़ी, पेन उठाई, पेपर उठाया, ऐसे करके फटाफट लिख दिया। लिख देने के बाद वो पेपर आपकी तरफ ऐसा किया, ये दवाई इतने इतने बजे, इतना इतना टाइम, इतना इतना डोज, इतने इतने दिन, फिर दूसरी तीसरी जो भी उसने लिखा है, इवन प्रिकॉशन भी जो भी लिखा है वो सब आपको बताएगा। ये करके उसने क्या किया, आपको आपकी प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्यूशन के नाम पर समझ दी। समझ ही तो दी ना, भी और क्या किया उन्होंने, समझ दी, मार्गदर्शन दिया ना कि ऐसा करना पड़ेगा तभी ये प्रॉब्लम जा सकती है। और ये समझ जब आपको उन्होंने दी, समझ ज्ञान कैसे दी, प्यार से दी या डांट कर दी? प्यार से दी, तो प्यार एक गुण है, तो ज्ञान दिया, गुण दिया, और क्या दिया उसने साथ में? उसने कहा देखो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपके बच्चे की प्रॉब्लम को समझ लिया है और उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको दे दिया है, और आप इसको अपनाना, प्रैक्टिकल करना, बच्चे से करवाना, और आपका बच्चा बिल्कुल पहले जैसा हेल्दी था वैसे हेल्दी हो जाएगा, आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये जितने दिन का ये डोज है, सपोज 5 दिन, 6 दिन, वॉट एवर, इस बीच में अगर आपको लगे कि नहीं कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मैं बैठा हूँ, मेरा कांटेक्ट नंबर है इसमें, आप मुझे कॉल करना, कुछ जरूरत होगी परिवर्तन की, दवाई की या कुछ नए की या डोज की, वो मैं करूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, घबराइए नहीं। करता है वो ऐसे। ये करके उसने क्या किया, आपको हिम्मत दी। तो क्या करुणा के नाम पर डॉक्टर ने क्या किया आपके एम को फुलफिल करने के लिए? आपका एम क्या था? मेरा बच्चा अनहेल्दी है, उसे हेल्दी करने के लिए आप अपनी करुणा बरसाओ। क्या करुणा के नाम पर उसने किया? आपको ज्ञान दिया, आपको गुण दिया, आपको शक्ति दिया। सो दिस वॉज डॉक्टर्स रोल ऑफ कृपा बरसाने की, उसके तरफ से यही कृपा है ना। अब आपको अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी ना, पेशेंट को। अब तो पेशेंट को कृपा करनी होगी कि डॉक्टर की कृपा से मुझे समझ प्राप्त हुई है, क्योंकि मेरे पास तो जो घरेलू उपाय थे मैंने कर लिया था ना, उसके बाद मेरे पास और कोई समझ बची ही नहीं थी कि अब क्या करना चाहिए, तो वो समझ उसने मुझे अभी दी। अब मैं कृपा के नाम पर उस समझ को प्रैक्टिकल जीवन में उतारूं। और वो करते हैं और बच्चा सचमुच वापस हेल्दी हो जाता है। और फिर हम क्रेडिट किसको देते हैं, इस डॉक्टर ने मेरे बच्चे को ठीक किया। बच्चा अगर डॉक्टर ने जो समझ गाइडेंस दी उसको प्रैक्टिकल नहीं करता तो नहीं होता ना। तो रोल तो दोनों का था, रोल तो दोनों का था, बट दूसरे का रोल पहले वाले के रोल के बिना शुरू ही नहीं हो पा रहा था। और इसलिए क्रेडिट किसको गया, डॉक्टर को, कि इस डॉक्टर ने मेरे बच्चे को ठीक किया। सेम वो तो बॉडी के लिए था, बीमारी कौन सी थी बच्चे को, कोई बॉडी की बीमारी थी। अब यहां तो हम बॉडी वाली बातें नहीं कर रहे ना, हम तो यहां क्या समझ रहे, इस बॉडी को चलाने वाली जो सोल है, जो ड्राइविंग फोर्स है, सारा कुछ हम उसको समझने के लिए बैठे हैं। बट ये एग्जाम्पल लेना पड़ता है ताकि आपको वो सहज समझ में आए। तो अब बात तो हमारे को आत्मा को ठीक करने की है। करुणा जो बरसानी है उस परमात्मा को किसके लिए बरसानी है, यहां जो हेट्रेडनेस, यहां जो चिंता, यहां जो फियर, उसी के लिए तो चाहिए थे ना, मुक्ति तो वही मांग रहे थे ना हम, और कौन सी वाली मांग रहे थे। इसका मतलब ये जो सोल अनहेल्दी हो गई है ना, अगर इस सोल में चिंता है, डर है, तो ये अनहेल्दी हुई या हेल्दी हुई। जबकि मुझे पता चल गया है कि सोल की इनेट क्वालिटी क्या है, पीस है, लव है, ब्लिस है, बट वो फीलिंग मैं नहीं कर पा रही हूं, उसका अपोजिट कर पा रही हूं, तो सोल क्या हो गई, अनहेल्दी। अब परमात्मा मुझ पर करुणा बरसाए तो वो भी क्या करेगा, इसको हेल्दी बनाने की तो आपको गाइडेंस देगा ना, हाँ वही तो उसकी कृपा होगी ना। तो वो परमात्मा भी क्या देता है, यही तीन चीजें देता है अपनी करुणा के नाम पर, जो हमने उसको पुकारा था, ओ करुणा के सागर तब मुझ पर अपनी कृपा बरसाओगे। तो क्या मिलना है आपको कृपा में, ये तीन चीजें मिलनी है, ज्ञान, गुण और शक्तियां। और इसीलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, तू सर्वज्ञ है, तू ज्ञानामृत का सागर है, तू ज्ञान सूर्य है। देते हैं हम उसको ऐसे टाइटल या नहीं देते हैं, देते हैं ना। क्या मतलब है सर्वज्ञ का, आत्माएं अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वज्ञ, हमें बस सिंपल करते जाना है। हम ये सारी महिमा करते आए हैं उसकी, बट हमने उसको सिंप्लीफाई कभी नहीं किया और हमें समझ में नहीं आया कि उसकी कृपा हम पर कैसे बरसेगी और उसका रूप क्या, उसका कर्तव्य कैसे, कैसे वो अपना कर्तव्य करता है, यह हमें कुछ समझ में नहीं आया। जस्ट मेक इट सिंपल एंड एवरीथिंग विल कम आउट। क्या होता है सर्वज्ञ माना, सर्वज्ञ माना जिसके ज्ञान के क्षेत्र में तीनों कालों का ज्ञान है, तीनों लोकों का ज्ञान है और क्या ज्ञान है, ये जो सृष्टि जो किसी समय ऑर्डरली में इन ऑर्डर फॉर्म में थी, जिसको हम स्वर्ग के नाम से, हेवन के नाम से याद करते हैं, जब सब कुछ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, एंड नाउ कहां पहुंच गई है, कलयुग नर्क, जहां ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, डिसऑर्डर, जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी थी और यहां पर नेगेटिविटी है। तो वापस कैसे इसका नव सृजन किया जाए और इस पुरानी वाले का कैसे विसर्जन माना विनाश कर दिया जाए और नव सृष्टि सृजन करके कैसे उसे सस्टेन किया जाए, ये ज्ञान उसके पास है। और इसलिए उसको क्या क्या टाइटल देते हैं, तीनों कालों का ज्ञान है, उसे कहते तू त्रिकालदर्शी है। उसके पास तीनों लोकों का ज्ञान है, हम कहते तू त्रिलोकी नाथ है। वे तीन कार्य करता है, नव सृष्टि सृजन, पुराने का विसर्जन और फिर नए का सृजन और साथ साथ उसका सस्टेनेंस। तो कहा तू त्रिमूर्ति रचयिता है, तू ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का सृजन करता है, तू विष्णु के द्वारा उस नई सृष्टि का पालन करता है और शंकर के द्वारा तू उस पुरानी सृष्टि का विनाश करता है। गाते आए हैं हम ये, गाते आए हैं हम ये त्रिमूर्ति रचयिता कि तीन मूर्तियों की रचना करके ये नया कर्तव्य वो करता है। क्यों? क्योंकि ये करुणा है उसकी, करुणा। हमने उसके पास कहा ना तो करुणा कर मुझ पर, मुझे मुक्त कर इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स से। तो ये करुणा है उसकी कि वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान देता है आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, कर्म का, फॉर एवरीथिंग वो हमें समझाता है। और वही ज्ञान तो आपको दिया जा रहा है राज्यक शिविर के अंदर। कल आपको आत्मा का ज्ञान दिया गया, आज आपको परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। आने वाले कल में इन दोनों का कनेक्शन कैसे करें, उसके आने वाले कल में किन कनेक्शन से बेनिफिट क्या होगा। पर कॉन्फ्रेंस तो 5 दिन की है, इस लिमिटेड टाइम में हम इतना ही दे पाएंगे। फिर जाके आप सेंटरों पे और डिटेल कर्मों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान वहां जाके आपको करना होगा। तो ज्ञान देता है, डॉक्टर ने भी यही किया था, पर्चा आपके सामने रखकर ज्ञान ही तो दिया था और क्या किया था। तो पहला काम वो ज्ञान देता है और इसलिए कहा तू सर्वज्ञ है, तू ज्ञान का सूर्य है। उसे ज्ञान का चंद्रमा नहीं कहा, सूर्य कहा। क्यों? चंद्रमा आज अगर अमावस पूर्णिमा है 15 दिन के बाद वो अमावस हो जाएगा, लेकिन आज अगर सूर्य पूर्ण प्रकाशित है आने वाले हर दिन में भी वो क्या रहेगा, पूर्ण प्रकाशित, सदा जागती ज्योत। और इसलिए उसको कहा तू ज्ञान का सूर्य है। फिर क्या कहा डॉक्टर ने, दूसरा काम क्या किया, गुण, प्यार दिया ना, हम उसको कहते हैं तू सर्व गुणों का सागर है, तू सिंधु है सर्व गुणों का। गाते हैं ऐसे नहीं गाते हैं, गाते हैं ना, तू प्रेम का सागर और मैं एक बूंद का प्यासा। गाते कि नहीं गाते हैं, तू प्रेम का सागर, तू शांति का सागर, तू आनंद का सागर, तू खुशियों का सागर, गाते हैं ना। तो वो आकर हमें गुणों से भरपूर करेगा, गुणों का सागर है वो, इसलिए गाया तू सर्व गुणों का सागर है। और तीसरा काम क्या किया था डॉक्टर ने, शक्ति दी थी। ये भी हमें शक्ति देता है, क्यों, क्योंकि वो सर्व शक्ति मान है, वो शक्ति देता है हमें। हमने गाया है उसको पर हम समझ नहीं पा रहे कुछ भी, क्यों गाया सर्वशक्तिमान, क्यों गाया तू सर्वज्ञ है, क्यों गाया तू सर्व गुणों का सागर है। उससे ज्ञान गुण शक्ति अपने जीवन में लेकर वो उसकी कृपा, फिर मेरा रोल शुरू हुए ना कि अभी मैंने ये लिया अब मैं उसको प्रैक्टिस में उतारूं तो मेरी अनहेल्दी सोल क्या हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, नेगेटिविटी से मैं मुक्त हो जाऊंगा और मेरी जो इनेट क्वालिटीज है वो बिना प्रयास के जंप होती रहेगी, रेडिएट होती रहेगी। अभी तो प्रयास करने के बाद भी वो नेगेटिविटी जंप कर देती है, कितना डिटर्मिनेशन करते कि मैं आगे से गुस्सा नहीं करूंगा, शांति से डील करूंगा। बात आती है गुस्सा कहां से जंप कर जाता है मुझे ही नहीं पता चलता है, क्योंकि गहरी जड़ें जमा ली है उन्होंने। तो सर्वज्ञ है वो, ज्ञान का सूर्य, सर्व गुणों का सागर। नदी क्यों नहीं बोला उसको? नदी भी तो बोल सकते थे ना? नहीं, नदी आज अगर उफान पे है इस वर्ष, अगले वर्ष सूखी भी हो जाती है, सूख जाती है। लेकिन सागर आज भी भरपूर है, आने वाले सालों में भी भरपूर ही रहेगा, वो खाली नहीं होगा। इसलिए कहा सर्व गुणों का सागर। सर्वशक्तिमान क्यों कहा? शक्तिमान भी तो बोल सकते थे ना, लेकिन सर्वशक्तिमान अंग्रेजी में शब्द है अलमाइटी अथॉरिटी, नॉट द माइटी बट अलमाइटी। क्यों ऑल शब्द जोड़ दिया, सर्व शब्द क्यों जोड़ा? दुनिया में भी लोगों के पास अथॉरिटी होती है ना, पीपल आर माइटियस होते हैं ना, माइट कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी पावर होगी, कितनी माइट होगी, काउंटेबल? अनलिमिटेड तो नहीं होगी ना, काउंटेबल होगी। और हो सकता है कि वो अपनी लिमिटेड अथॉरिटी से, माइट से कुछ ऐसे काम है जो नहीं कर पाते होंगे। जिस फील्ड की अथॉरिटी हो सिर्फ वो ही कर पाएंगे ना, दूसरा तो नहीं कर पाएंगे। और समटाइम्स दे मे टेक इन अ रॉन्ग वे। आपको बताया गया कि आप यहां के मॉनिटर, आप जो करेंगे वो सबको मानना है, लेकिन मैं अपने इस मॉनिटरशिप का गलत फायदा उठाती हूं। फलाने व्यक्ति से मुझे चिढ़ है, वो जैसे ही आता है बोलती यहां से हटो, तो जाओ पीछे। अभी मैंने किया क्या? मैं गलत यूज करी, क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी कुछ कुछ अंदर में अनबन है, तो इट इज नॉट, तो मैंने रॉन्ग यूज किया ना अपनी मॉनिटरशिप का, जो मुझे अथॉरिटी दी गई थी कि यू डू द मॉनिटरशिप। तो हम रॉन्ग यूज भी कर सकते हैं अथॉरिटी का, लेकिन परमात्मा कभी रॉन्ग यूज नहीं करेगा अपनी अथॉरिटी का। और जो आत्माओं के पास अथॉरिटी है वो उनसे बढ़कर दूसरी वाली अथॉरिटी है उसके पास। जो इंसान काम कर सकता है वो भी वही कर ले तो सर्वोच्च कहां हुआ हो, है ना? इसलिए उसके पास वो अथॉरिटी है जो किसी के पास नहीं है। आज विज्ञान ने, आज साइंस ने, आज टेक्नोलॉजी ने इतने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, इतनी उन्नति कर ली है कि अगर शरीर के अंदर कोई अस्थमा ट्यूमर ट्यूमर हो उसको निकाला जा सकता है। ट्यूमर गंदगी हुई ना, लंग्स में पानी भर जाए उसको निकाला दिया, आर्टरी ब्लॉक हो जाए स्टेंट लगा के रास्ता खोल दिया जाए। गंदगी से थोड़ी राहत दिलाता है ना उस विज्ञान, फिर न सिर्फ शरीर के अंदर लेकिन शरीर के बाहर सराउंडिंग में भी गंदगी, कौन इतनी किसको फुर्सत पड़ी है, कितना ताकत है इतना सफाई करने का, मशीनें बना दी, लगा दो प्लग में बटन ऑन करो, मशीन अपने आप सारे गंदगी को अपने में खींच लेगी और सफाई हो जाएगी। लेकिन विज्ञान ने कोई ऐसी मशीन बनाई जिसको ऑन करो और यहां की निगेटिविटी को खींच ले वो? नहीं। साइकियाट्रिस्ट की संख्या बढ़ते जा रही है, पहले डॉक्टर्स होते थे, चिकित्सक होते थे, अभी मनोचिकित्सक बढ़ती जा रही है संख्या, और ये भी उतना ही बढ़ते जा रहा है। सफलता है? नहीं। कोई मशीन निकाली कि यहां से खींच ले ऐसे? नहीं। वो परमात्मा इस निगेटिविटी को खींचने की ताकत रखता है, इसीलिए आत्मा ने उसको पुकारा, ओ पतित पावन आओ, हम पतितों को पावन बनाओ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पतित? इम्प्योरिटी। ये पूरी जो निगेटिव फीलिंग है, व्हाट इज दिस? इट इज अ प्योर फीलिंग और इम्प्योर फीलिंग? इम्प्योरिटी। देखो आत्मा को भीतर में है सब कुछ छपा हुआ और पुकारती है, ओ पतित पावन आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ. सो ही हैज दैट पावर कि जिस पावर को वो फोकस करेगा और मेरी नेगेटिविटी खत्म करेगा. जैसे सन की लाइट को फोकस करते हैं तो कागज जल जाता है. आज लेजर बीम से ऑपरेशन करते हैं, आंख का लेंस जो खराब वाला था निकाल दिया, नया वाला सेट किया. पावर है ना, ये पावर है इसके लिए का सर्वशक्तिमान. तो कृपा के नाम पर उसके अगले टाइटल तीन कौन से निकले, सब परम से निकल के आ रहे हैं. क्लियर, सब परम से निकल. तो कृपा के नाम पे फिर तीन टाइटल निकल के आए, सर्वज्ञ या ज्ञान सूर्य या ज्ञानमृत के सागर, दूसरा सर्व गुणों के सागर या सिंधु, और तीसरा सर्व शक्तिमान. और ये ज्ञान गुण शक्तियां उस सदा लुटाएगा और सब पर लुटाएगा, है ना. तभी तो सागर होने का फायदा है ना. दुनिया वाले सागर अगर आपके पास अखुट भंडार हो तो ही आप सदा और सर्व को लुटा सकते हो ना. लेकिन आपके पास लिमिटेड स्टॉक होगा तो आप सर्व को और सदा को नहीं लुटा सकते हो. उसमें आप लिमिटेशन रखेंगे, फला फला दिन पर हम दान करेंगे, हम इतना इतना करेंगे बस. लेकिन ये सर्व को और सदा के लिए, और इसीलिए वो सूर्य है, वो सागर है, वो पावर हाउस है. इसीलिए का सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों का सागर, सर्वज्ञ ज्ञान सूर्य. क्लियर हुआ, ये उसकी मर्सी है. तीन गुण लुटाता है वो. आप कहेंगे कब लुटाता है, कब लुटाता है? तो पहले तो परम शब्द से हमें पांच बातें निकल कर आई. क्लियर, नंबर वन रिपीट कर लो क्योंकि ये मुझे पता होना चाहिए. फर्स्ट वन, सर्वोच्च, हाईएस्ट ऑन हाई. नंबर टू, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, एलिवेटेड, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, उससे ज्यादा कोई श्रेष्ठ नहीं है. फिर नंबर थ्री, सर्वज्ञ. नंबर फोर, सर्व गुणों का सागर. नंबर फाइव, सर्व शक्तिवान. और उसमें सब शब्द कौन सा ऐड होगा, सदा के लिए और सर्व के लिए. ठीक है, और इसीलिए कहा वो दाता है. ओ दाता, कब तुम मेरी झोली भरोगे. वो कहते हैं उसको दाता, सबके लिए वो दाता है. जिसे सूर्य सबके लिए प्रकाश देता है, वो सबके लिए ज्ञान देता है, सबको ऊन लुटाता है, सबको शक्तियां देता है. तो परम शब्द से पांच बातें. हम क्या देख रहे थे, परमात्मा का परिचय. तो परम शब्द से उसके गुण और कर्तव्य तो क्लियर हो गए. परिचय में ये सब बातें आती है ना, गुण और कर्तव्य सारे क्लियर हो गए. लेकिन अब ये गुणों और कर्तव्य उसके, करुणा हम पर वो कब बरसाता है. तो आप सबने महाभारत देखा ही होगा, टेलीकास्ट भी हुआ था कोरोना काल में. तो हर एपिसोड की शुरुआत कौन से श्लोक से होती थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति. पूरा लंबा श्लोक है बट सिंपल मीनिंग है कि धरती पर जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं अधर्म को मिटाने और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने अवतरित होता हूं. अब आप क्षण भर के लिए आंख बंद करके संपूर्ण धरती पर नजर फेरिए और बताइए इस धरती पर अधर्म बढ़ा हुआ दिख रहा है, धर्म की ग्लानि हुई है ऐसा प्रतीत होता है। देखो संसार के हालातों को, रोज टीवी में क्या सुन रहे हैं, अखबारों में क्या पढ़ रहे हैं, और बताओ आंसर आंसर अधर्म बढ़ा है, आंसर यस और नो, धर्म की ग्लानी हुई है, यस। तो उसने जो ये अपना प्रॉमिस, ये वायदा दिया है कि मैं आता हूं कब, जब ऐसा समय हो, और अभी हमने कहा, स्वीकार किया, यस दैट इज द टाइम नाउ, सो वेयर ही शुड बी नाउ, उसको कहां होना चाहिए अभी इसके वायदे के अनुसार, कहां होना चाहिए बोलो, यहां होना चाहिए। और वो यहां आया है धरती पर अपना कर्तव्य करने के लिए, यही खुशखबरी सुनाने के लिए तो आप कॉन्फ्रेंस के नाम पर इनवाइट किया गया है, इसी खुशखबरी को सुनाने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जाते हैं। तो वो आ गया है। अब एक होता है घर में, जैसे माँ गर्भवती है तो बुद्धि में रहता है बच्चा आने वाला है आने वाला है आने वाला है, लेकिन एक दिन आता है बच्चा जन्म ले लेता है, और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना, तो जो हमारे इष्ट मित्र होंगे, सगे संबंधी है, फोन उठाएंगे, उनको कॉल करेंगे और खुशखबरी देंगे, आपको पता है हमारे घर में बच्चे का जन्म हो गया है, और वो सामने से इस खुशखबरी को सुनकर वो भी दो तीन प्रश्न तो उसी समय पूछ लेता है, अच्छा बच्चे का जन्म हो गया है, किस पे गया है, रंग कैसा है उसका, बच्चा है कि बच्ची है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। तब आपको नहीं सवाल उठ रहे, अगर वो आ गया है तो कैसा है, जब हमने कहा वो आ गया है तो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे करता है अपना काम, आएगी ना जिज्ञासा, होगी या नहीं होगी, तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो परमात्मा, ये सारा ज्ञान उसका दिया हुआ है हा? तो परम शब्द से गुण कर्तव्य समझा दिए, और अभी जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है ना, ये आत्मा शब्द से समझाते हैं वो, क्योंकि वो परम आत्मा है। तो कहा बच्चों, जैसे आप आत्मा है तो मैं भी एक आत्मा हूं, बस फर्क ये है कि मैं परम आत्मा हूं, पर हूं तो मैं भी आत्मा ना। अब देखो, यहां से एक बिल्ली का बच्चा यहां से गुजर जाए तो उसके माँ बाप की कल्पना आप किस रूप में करेंगे, बिल्ली के रूप में या कुत्ते के रूप में, बिल्ली के। यहां से एक हाथी का बच्चा गुजर जाए, उसके माँ बाप की कल्पना हाथी के रूप में या ऊंट के रूप में, बोलो बोलो, हाथी के रूप में। यहां से एक मनुष्य का बच्चा गुजर जाए, उसके माँ बाप की कल्पना मनुष्य रूप में या गधे रूप में, मनुष्य रूप में। तो परमात्मा ने कहा, बच्चे अगर तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तुम बच्चे की संतान की छवि क्या है, आत्मा की छवि क्या है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, अब तुम ही बताओ मेरी छवि क्या होनी चाहिए, बोलो तुम ही बोलो, तुम ही बोलो कि क्या होनी चाहिए मेरी छवि, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। तो वो आ गया है, कौन सा स्वरूप है उसका, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। कहा ना बच्चे को मेले में गुम हो गया था ना, तो छवि दिखाई, ये पापा ये पापा, क्योंकि मैच नहीं हो रही अंदर वाली से। अभी आपने एक्सेप्टेड बोला क्योंकि अंदर में वो छवि है, भले वो निकल कर नहीं आ रही थी, क्लैरिटी नहीं होने के कारण आस्था के अनुसार किसी और छवि को बिठाया था, लेकिन फिर भी अंतरात्मा यही पुकारती थी, हे प्रभु बताओ ना तुम कौन हो। और जब उसने बताया, यू एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया ना आपने कि मैंने बोला इसलिए एक्सेप्ट किया, यू एक्सेप्टेड यूअर सेल्फ, ये अंकित है अंदर में। तो रूप है उसका ज्योतिर्बिंदु, रंग पूछा ना कैसा रंग है उसका बच्चे का, तो बताओ कैसा रंग होगा उसका। तो परमात्मा ने कहा कि तुम आत्माएं भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हो, लेकिन जब आपकी बैटरी फुल चार्ज है, आप पूनम के चांद की तरह बिल्कुल वो जो आपकी एक्सट्रीमिटी है उतना प्रकाश फैलाते हो, लेकिन धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती है, अमावस के चांद रह जाते हो, ओनली सिंगल सिल्वर लाइनिंग, बाकी पूरा डार्कनेस, तुम धुंधला जाती हो। लेकिन मैं तो देह धारण ही नहीं करता हूं, मैं तो सदा जागती जो सूर्य, और इसलिए मेरा रंग सदा निखरा निखरा उजला उजला ब्राइट। गॉट इट? रूप पता चला, रंग पता चला, फिर पूछा अच्छा बच्चा है कि बच्ची है। अब सवाल तो उठ ही नहीं रहा है, बच्चा है कि बच्ची है, मतलब लिंग पूछ रहे हैं आप, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, क्योंकि उस बच्चे का एक चिन्ह होता है पर्टिकुलर लिंग कि जिसको देखकर हम डिसाइड करते हैं ये बच्चा है या बच्ची है। अब ये परमात्मा जिसके लिए हम ये समझ कर आए कि सर्वोच्च होने के नाते वो देह में जाकर शरीर धारण ही नहीं करता, तो सवाल ही नहीं उठता उसके लिए स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बट फिर भी अगर हमें इस रूप से ही समझना है, तो भगवान ने कहा तुम्ही ने तो शिवालय बनाए और तुम्ही ने वहां एक प्रतिमा रखी और उस प्रतिमा को तुमने ही नाम दिया शिवलिंग, तुमने ही उसको कहा ज्योतिर्लिंग, तुमने ही उसको कहा शिव ज्योतिर्लिंगम। अर्थात लिंग माना तो चिन्ह होता है ना, लिंग माना सिंबल, डोंट टेक इट इन एनी अदर वे, उसका सिंपल मीनिंग है आकार आकृति सिंबल प्रतीक। तो तुमने मेरा कैसा प्रतीक बनाया है, एक ज्योति का आकार बनाना हो, पेपर पे उतारना हो उस ज्योति का स्वरूप, आर्टिस्ट को कहेंगे तो ऐसा ही उतारेंगे जैसे वो प्रतिमा है। तो शिवलिंग कह के तुम भी तो बता रहे हो कि ये किसकी प्रतिमा है, उसकी प्रतिमा है जिसका स्वरूप ज्योति है और जिसका नाम शिव है, तभी तो कहा शिव ज्योतिर्लिंगम। पता चल गया, रूप रंग लिंग नाम, सब क्लियर, क्लियर हो गया सब कुछ। अब क्या बाकी बचा, नाम तो उसके बहुत है, कर्तव्यवाचक गुणवाचक, हम जो गुण और कर्तव्य देखे उसके आधार से कितने नाम रख दिए लोगों ने, 12 ज्योतिर्लिंगम जो प्रसिद्ध है, एक एक का अलग अलग नाम दिया है ना, त्र्यंबकेश्वर महाकालेश्वर पापकटेश्वर सोमनाथ वैद्यनाथ, तो गुणवाचक और कर्तव्यवाचक उसके नाम है, पर उन सबका सार जिस एक शब्द में समा जाता है वो है शिव, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, चाहे वो पाप काटे तो भी कल्याण करेगा, सोमनाथ के नाम पर सोमरस पिलाए तो भी कल्याण करेगा, वैद्यनाथ के नाम पर हमारा इलाज करे तो भी कल्याण ही करेगा। तो शिव माना कल्याणकारी। तो परमात्मा ने कहा गुण और कर्तव्य के आधार से तो बहुत नाम तुमने मुझे दिए हैं, लेकिन शिव नाम मेरा ओरिजिनल नाम है जिसमें बाकी सभी नामों का सार समा जाता है, सदा शिव कहते हैं उसको, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं हम उसको। और इसीलिए शिवलिंग पर तीन लकीरें दिखाई जाती है और बीच में एक आंख, कि वो परमात्मा जिसका स्वरूप ज्योति है इस धरती पर जब आता है तो अपने तीन कर्तव्य कान ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि सृजन, महेश के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि जो सृजन कर रहे हैं उसका सस्टेनेंस, उसका पालन। तो वो परमात्मा जो कहा ज्ञान देता है, गुण देता है, शक्ति देता है, आकर के अब डायरेक्ट ज्योति आपको आके कैसे मिलेगी। और इसीलिए कहा कि वो तीन कर्तव्य किसी के द्वारा करवाता है, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि सृजन करता है, अर्थात ब्रह्मा के मुखारविंद से ज्ञान देता है। और वो ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला, अर्थात इस संसार का कोई व्यक्ति, बूढ़ा अर्थात अनुभवी, उसके काया में वो प्रवेश करता है, वो परम ज्योति, निराकार ज्योति। हाँ, वो निराकार ज्योति, ज्योति अपने आप में निराकार है, ये देह लेते हैं इसका आकार होता है, ठीक है, वो निराकार ज्योति। तो वो निराकार ज्योति इसी दुनिया के एक व्यक्ति में, काया में प्रवेश करती, जिसको गीता में आता है मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, और वो सारी कहानी आपने कल सुन ली है, सुन ली है ना कल हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन के इस टॉपिक पर, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। तो वो आकर के परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान गुण शक्तियां लुटा रहा है, और जो कर्तव्य है पतितों को पावन बनाने का, अर्थात इम्प्योरिटी को निकाल कर प्योरिटी एस्टैब्लिश करने का, अधर्म को निकाल कर धर्म को एस्टैब्लिश करने का, वो कर रहा है। तो परिचय में एक बात लास्ट में है, रहता कहाँ है, तो कहा अवतरित होता है, मतलब कहीं और रहता होगा और आया है। कहाँ रहता है, क्या कहते हैं उसको, ऊपर वाला कहते हैं उसको, ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाला है, ऊपर कहाँ रहता है, तो कहा जैसे तुम आत्माएं, कल तीन लोग का चित्र देखा ना आपने, देखा ना ये चित्र, कि नीचे ये साकार मनुष्य सृष्टि स्थूल लोक, फिर उसके ऊपर सूक्ष्म, नीचे स्थूल फिर सूक्ष्म, और ऊपर में आत्माओं की दुनिया, जहां सिर्फ आत्माएं नहीं परम आत्मा भी रहते हैं। ये मेरा लोक है, और इसीलिए जाने अनजाने उसको याद करते हुए, उसको पुकारते हुए नजरे कहां जाती है, पर। तो वो भी परम धाम निवासी है, क्योंकि उसका धाम भी तो ऊंचा होगा ना, जिसका नाम ऊंचा, जिसका काम ऊंचा, धाम भी ऊंचा। तो ऊंचे ते ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचे ते ऊंचा जिसका काम है, ऊंचे ते ऊंचा जिसका धाम है, वो है सदा शिव परमात्मा, उसी को हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। अब सिर्फ एक बात रह गई, जो कोर्ट वाला एग्जाम्पल दिया था कि वो अपने आप में एक होती है कोर्ट, उससे ऊंचा कोई नहीं होता है, और उसके फैसले को सब कोई स्वीकार करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। अब परमात्मा ने कहा मैं ज्योतिर्बिंदु और बाकी सारी बातें जो भी, क्या ये सबको स्वीकार है। तो चलिए थोड़ी सी, सबको स्वीकार मना सर्वमान्य, और चूंकि मानवता आज धर्मों में बट गई है इसलिए कहेंगे सर्व धर्म मानिए। तो छोटे से धर्मों की यात्रा करते हैं और देखते हैं क्या सभी धर्मों को ये परिचय जो परमात्मा ने आकर दिया स्वीकार है। तो शुरुआत करते हैं सिखिज्म से। सिखिज्म में गुरु नानक देव जी ने परमात्मा का परिचय देने के लिए एक उंगली का सहारा लिया। उंगली ऊपर की तरफ, अपने तरफ नहीं, उंगली ऊपर की तरफ और एक ही उंगली बताकर क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा एक है, ऊपर रहता है, वो एकोंकार है, वो ज्योति स्वरूप है। कहा गुरु नानक ने, कहा अपने आप को क्या कहा, नानक दास, बता रहा है कि ये जो मैं महिमा कर रहा हूं इसकी नहीं है, परमात्मा की है। क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने भी एक उंगली उठाई, कहा गॉड इज वन। उसने भी क्या बोला, गॉड एक है, ऊपर रहता है, और फिर कहा गॉड इज लाइट, ज्योति। क्लियर। फिर महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैन प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के लिए कहा नहीं, लेकिन सभी जानते हैं वर्षों तक खूब तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप साक्षात्कार हुआ, किसका, ज्योति का। बोध हुआ आत्मा ज्योति है और इस आत्मा ज्योति को एक यात्रा तय करनी है, कहां तक, परम ज्योति तक। परम ज्योति कौन है, परमात्मा। इनडायरेक्टली उन्होंने भी परमात्मा का परिचय वही दे दिया। पारसियों के टेंपल कहे जाते हैं फायर टेंपल, जहां एक अखंड रूप से अग्नि प्रज्वलित है, इशारा किया जा रहा है परमात्मा सदा जागती ज्योति है। मुस्लिम भाई बहने परमात्मा को याद करते हैं अल्लाह नूर है, नूरे इलाही कहकर और ऊपर की ओर नजरे करते हुए अपनी क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, नमाज जिसको करते हैं। तो वो भी कह रहे हैं परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है, ऊपर का रहता है। बाकी कर्तव्य गुण तो सभी ने वही बताए हैं। लास्ट में आते हैं हिंदुइज्म के अंदर, कि हिंदुइज्म में दो प्रकार के मंदिर, एक शिवालय, दूसरा देवालय। शिवालय में शिव ज्योतिर्लिंगम, उसका वर्णन करके आगे, देवालय में देवी देवताओं का स्थापना, श्री राम है, श्री कृष्ण है, देवियां हैं, श्री गणेश है, हनुमान है, जो देहधारी दिखाए गए हैं। श्री राम को भी जब रावण से युद्ध करना था तो क्या किया, उससे पहले रामेश्वरम में शिवलिंगम की स्थापना करके, पूजा अर्चन करके शक्ति अर्जित की, अर्थात श्री राम से ऊंचे शिव जी हैं। कृष्ण को भी जब कौरवों और पांडवों का युद्ध तय हुआ और पांडवों को उस युद्ध में जीत पानी चाहिए, उसके लिए गोपेश्वरम में वो शिव ज्योतिर्लिंगम की पूजा खुद ने भी की और पांडवों को भी प्रेरित किया कि पूजा करके क्या कर लो, शक्ति को अर्जित कर लो, श्री कृष्ण से भी ऊंचा शिव जी। हनुमान स्वयं राम भक्त है और राम शिव जी को मानते हैं। गणेश तो कहे ही जाते हैं शिवपुत्र। और देवियां, देवियों को कहते हैं शिव शक्तियां, कि वो हस्तियां हैं जिन्होंने शिव से शक्तियां अर्जित की है और शिव से शक्ति अर्जित करके ही वो असुरों का संहार करने में सफल असुर संहारिणी बनी है। उनसे भी ऊंचा कौन हुआ, शिव है। तो सबने स्वीकार किया शिव का परिचय, सबने स्वीकार किया तो सर्वधर्म मान्य हुआ, तो परिचय की सारी बातें क्लियर हो गई। तो ऐसे पिता को अभी हमें क्या करना है, इसका संग करना है, इसके पास ट्यूशन लगाकर बैठना है, तभी तो मेरी सोल कॉन्शियसनेस क्या होगी, पक्की होगी तब जाकर मेरी जो इनेट क्वालिटी से पीस, प्योरिटी, पावर, नॉलेज, ब्लिस, हैप्पीनेस, ये सब क्या होगी, जंप करेगी। अभी कौन सी को जंप कर रही है, पूरी नेगेटिव लिस्ट। तो इसलिए आज हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, तो भले ना आज दिन तक हमने आस्था के रूप में जिसको अपने दिल में बिठाया था, आज के इस लेसन से पता चल गया वो कोई ना कोई देहधारी है, और इसीलिए आत्मा पुकार रही थी बताओ आखिर आप कौन हो। और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होती है। अब आप बताओ, परमात्मा एक है, देवी देवताएं कितने हैं, कितने हैं, परमात्मा एक है लेकिन धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं कितनी हैं, परमात्मा एक है लेकिन धर्म के कार्य करने वाली आत्माएं कितनी हैं, परमात्मा एक है लेकिन महान कार्य करने वाले महात्माएं कितने हैं। तो जो अनेक है वो कैसे परमात्मा हो सकता है, और इसलिए जो एक है परमात्मा, जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो ही उसका सत्य परिचय है। उसके लिए ही आत्मा पुकार रही थी बताओ तुम कौन हो, बताओ तुम अपना दर्शन करा दो। तो चलिए आज उसके सानिध्य में बैठकर उसका दर्शन खूब कर लेते हैं, और फिर कल, क्योंकि उसके संग में बैठकर क्या मैं सीखूं, क्या मैं प्राप्त करूं, कैसे उसका कनेक्शन जोड़ूं कि उसका ज्ञान और उसके गुण और शक्ति मेरे में भरे, ताकि मेरी सोल कॉन्शियसनेस पक्की हो, वो कल देखेंगे, जिसको कहते राजयोग का आधार और विधि। तो आज छोटी सी थोड़ी सी एक्सरसाइज कहें, अभ्यास कहें, प्रैक्टिस, उसका दर्शन जी भर के कर लेते हैं और उस छवि को फिर से अंकित कर लेते हैं, ताकि जब भी मैं बोलूं ओ प्रभु, वो प्यारी सी ज्योतिर्मय छवि सामने जंप करके आ जाए और मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। तो चलिए सीधा बैठेंगे और सब तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान मस्तक के बीचों बीच केंद्रित करें। देखें स्वयं को, एक दिव्य सितारा, आत्मज्योति मस्तक के बीचों बीच चमक रही है। मैं दिव्य सितारा सदियों से परमात्मा को पुकार रही थी, ओ मेरे पिता परमात्मा, ओ करुणा के सिंधु, ओ मुक्ति दाता, ओ सच्चित आनंद सत्यम शिवम सुंदरम, आओ मेरे जीवन में अपनी कृपा बरसाओ, अपनी सत्यता से मुझे परिचित कराओ, अपने सत्य स्वरूप का दीदार कराओ। आज मैंने उन सब बातों को समझा है कि मेरे पिता परमात्मा भी मेरे ही जैसे ज्योतिर्बिंदु है, सदा जागते जो देखे उस सदा शिव सत्यम शिवम सुंदरम की उस जागती ज्योत स्वरूप को अपने सामने, जिसके दर्शन के लिए मैं युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से प्यासी रही। ये उसकी सुंदर छवि है जिसको दिल ने स्वीकारा है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, तो मेरे पिता परमात्मा भी मेरे ही जैसे ज्योति स्वरूप। जी भर कर इस सुंदर छवि को बुद्धि के नेत्र से, समझ के नेत्र से देखें, उस ज्योति स्वरूप से जो प्रकाश की अनंत किरणें फैल रही है उन्हें देखें, और कैसे वो किरणें मेरी तरफ आ रही है उसको देखें, उसकी कृपा मुझ पर हो चुकी है। उसने मुझे ज्ञान गुण शक्तियों से सजाने के लिए धरती पर अवतार के रूप में अवतरित हो गए हैं। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसके सानिध्य में रहकर, उससे कनेक्शन जोड़कर, नित्य उसके ज्ञान को समझूं, उसके गुणों को अनुभव करूं, उसकी शक्तियों को भीतर में भरूं। उसने अपना रोल प्ले किया है, अब मुझे अपना रोल प्ले करना है, नित्य छवि के दर्शन करने हैं और कनेक्ट होकर उसकी पावर को अपने में भरना है। देखिए उसका सुंदर प्रकाश मुझ आत्मा को आलोकित किए हुए है, मुझ पर उनकी छत्र छाया है, कृपा सिंधु ने कृपा बरसा दी है। दिल कहता है, ओ मेरे मीठे शिव बाबा, कितना मैं शुक्रिया आपका करूं, जन्मों की प्यास बुझाई है, लेकिन आपने जो कृपा बरसाई है, अगला जो मेरा कदम है कि मैं उस ज्ञान गुण शक्तियों को अपने जीवन में उतारूं, वो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आपके ज्ञान गुण शक्ति से अपने को भरने के लिए जो राज्यों का अभ्यास करना है वो भी मैं सीखूंगी, और आपसे मेरा संबंध शाश्वत बना रहे। थैंक यू बाबा, अपने सत्य स्वरूप में मेरे जीवन में पदार्पण करने के लिए। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। इंदिरा दीदी का बहुत बहुत दिल से तालियों के साथ हम धन्यवाद करते, शुक्रिया करते हैं।